أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے جیون میں سکھی اور پرسن ہوں گے میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں مطہرات یا ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جو کسی چیز کو پوتر کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلی چیز جل یا پانی تھی جس کے بارے میں کچھ احکام یا کچھ آدیشوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہماری انتم بحث اس استھان تک پہنچی تھی کہ ہم نے آپ کو ورشا کے جل کی کچھ وشیشتاؤں کے بارے میں آپ کو بیان کیا اسی بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس پروگرام میں کچھ مسئلوں کو بیان کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری اصلی بات چیت ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی اس کا وشے یہ ہوگا کہ کوئی چیز کس پرکار پوتر کی جا سکتی ہے یعنی جب جل سے ہم کسی چیز کو پوتر کر رہے ہیں تو کیسے پوتر ہوگی اور اس کی کیا شرطیں ہوں گی اور کیا وشیشتائیں ہوں گی تو ہم اپنی پچھلی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کو پچھلی بحث میں ورشا کے جل کی وشیشتاؤں کے بارے میں بیان کیا اس میں ایک دو باتیں ہم آپ کو اور بیان کریں اس کے بعد ہم اپنی بحث کو اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے ورشا کے جل کی ایک وشیشتا یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز پر پڑتا ہے کسی نجس چیز پر پڑتا ہے تو ایک ہی بار میں اس چیز کو پوتر کر دیتا ہے یعنی جیسے ہی اس اپوترتا سے گزر جائے ورشا کا جل ویسے ہی وہ چیز پوتر ہو جاتی ہے اور جیسے کہ اگر دھرتی یا زمین اس پرکار کی چیزیں اپوتر ہو جائیں تو ان چیزوں کو ورشا کا جل پوتر کر دیا کرتا ہے اس کے بعد جو ایک کچھ مسئلے پیش آتے ہیں وہ تقریباً ہر چیزوں میں ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں پانی کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں سندیہ ہوتا ہے شک ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے ہم نے اس کے بارے میں کچھ مسئلوں کو یہاں پر بیان کریں گے کہ اگر ہمیں اس بات کا سندیہ ہو کہ جو پانی ہمارے سامنے ہے وہ پانی کر ہے یعنی اس کی ماترا کر بھر ہے یا نہیں ہے یعنی وہ کر ہے یا قلیل ہے تو اگر ہمیں اس بات کا سندیہ ہے تو اس کے بارے میں کہا یہ جائے گا یہ پانی کر ہے یعنی کہا جائے گا کر ہے لیکن کر پانی کی ساری وشیشتائیں اور سارے احکام سارے آدیش اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے یعنی کیا اس کے بارے میں وہ آدیش کیا ہیں یہ ہم اپنے آگے کی بحث میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے وسترت روپ سے اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات چیت کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک پانی ہمارے سامنے تھا ہمیں پتہ تھا اس پانی کی ماترا کڑ سے ادھک تھی اب ہمیں اس بات کا سندیہ ہو رہا ہے کہ اس کی ماترا کڑ سے کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں وہی کہا جائے گا چونکہ ہمیں اس بات کا وشواس تھا ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ ماترا کڑ سے ادھک تھی لہٰذا اس وقت بھی ہم اس سمے بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ پانی کڑ سے ادھک ہے اور تیسری بات جہاں پر ہمیں سندیہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سامنے جو پانی پڑا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ سندیہ ہوتا ہے یہ پانی نجس ہے یا نہیں ہم کو اس بات کا وشواس تھا کہ پہلے جب یہ پانی ہمارے سامنے تھا وہ پوتر تھا اب ہمیں اس بات کا سندیہ ہو رہا ہے اس بات کی شنکا ہو رہی ہے کہ یہ پانی جو ہمارے سامنے پہلے پوتر تھا اب اپوتر ہوا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا چونکہ پہلے پوتر تھا لہٰذا اب بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ پانی پوتر ہے اور اپوتر نہیں ہوا ہے اور اسی پرکار اس پانی کے بارے میں بھی کہ جو پہلے ہمیں اس بات کا وشواس تھا کہ یہ پانی مطلق تھا یعنی کیا ہمارے سامنے ایک گلاس میں مان لیجئے پانی رکھا ہوا تھا ہمیں پتا تھا کہ پانی ہے اور مطلق ہے یعنی اس کو پانی کہا جائے گا اب کچھ دیر بعد یا ہم کہیں باہر چلے گئے اس کے بعد واپس آتے ہیں ہمیں اس بات کا سندیہ ہو رہا ہے یہ پانی جو پہلے اس گلاس میں رکھا ہوا پانی مطلق تھا اب بھی مطلق ہے یعنی ہمیں سندیہ ہو رہا شاید کوئی ایسا ویکتی آیا ہو جس نے اس کے اندر شکر ملا دی ہو اور اس کو گھول دیا ہو اب یہ شربت بن گیا ہے तो अगर हमें इस बात का संदेह हो रहा है, हमें विश्वास नहीं है इस बात का कि वो मुजाफ हुआ है, तो हमें कहा यह जाएगा ये पानी मुतलक है और इसके ऊपर मुतलक के अहकाम लागू होंगे। यानी क्या? यानी ये कि ये किसी चीज़ को पवित्र कर सकेगा, इससे वजू किया जा सकेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें इसके बारे में कही जा सकती हैं और ये अहकाम इसके ऊपर लागू होंगे। तो ये वो चीज़ें थी जो संदेह के बारे में थी। इसी में जैसे हमने आपको मुतलक के बारे में बताया, इसी में इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी क्या? यानी अगर कोई गिलास हमारे सामने रखा हुआ था शरबत का था, अब हमें इस बात की संदेह हो रहा है, इस बात का शक हो रहा है कि ये पानी मुतलक हुआ या नहीं हुआ, तो ये कहा जाएगा नहीं, ये मुजाफ था, मुजाफी है और मुजाफ फ़िलहाल इसको मुजाफी कहा जाएगा और इसके ऊपर मुजाफ के अहकाम लागू होंगे। तो ये वो चीज़ें थी जो संदेह हो रही थी, उसके बारे में हमने आपके सामने अहकाम को बयान किया। उसके बाद जो असली बहस, जो जिसके बारे में कहा जाए अपने इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, वो ये है कि पानी किसी चीज़ को कैसे पवित्र कर सकता है, पानी किस प्रकार किसी चीज़ को पवित्र करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में वो चीज़ें जो पवित्र करती हैं, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से सरोकार रखते हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे जीवन में उपयोग की जाती है, वो जल है, और अधिकतर चीज़ों को ये जल पवित्र कर सकता है। लेकिन पवित्र करने के लिए ये जब जल किसी चीज़ को पवित्र करेगा तो उसकी कुछ शर्तें हैं, यानी जिस जो चीज़ नजिस है उसके बारे में कुछ शर्तों के साथ वो पवित्र करेगा। सबसे पहली चीज़ ये कि जो चीज़ अपवित्र या नजिस है वो क्या है, वो बर्तन है या बर्तन के अतिरिक्त कोई चीज़ है, और जो पानी पवित्र कर रहा है वो कुर है या कलील है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर उठेंगे। तो वो चीज़ अगर अपवित्र चीज़ या नजिस चीज़ बर्तन है और पवित्र करने वाला पानी कुर है, अगर नजिस चीज़ बर्तन हो और पवित्र करने वाला पड़ने वाली चीज़ पवित्र करने वाला पानी कुर हो, तो अगर उसको एक मर्तबा कुर पानी से धुल दिया जाए तो वो पवित्र हो जाया करता है। लेकिन अगर पवित्र करने वाला जो जल है, जो पानी है, वो कलील है, कुर से कम है, तो उसके बारे में ज़रूरी यह है, आवश्यक ये है कि जब कलील पानी से किसी बर्तन को पवित्र किया जाए तो कम से कम 2 मरतबे उसको धोया जाए। ये वो एक चीज़ है जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है जिसके बारे में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो बर्तन नजिस हुआ है, जो बर्तन अपवित्र हुआ है, वो किसी आम अपवित्रता से अपवित्र हुआ हो। लेकिन अगर बर्तन को बर्तन शराब के कारण नजिस हुआ हो, बर्तन को कुत्ते या सुअर ने चाट लिया हो, या उसमें कोई चीज़ लिक्विड चीज़, कोई पानी, कोई जल या इस प्रकार की कोई चीज़ पी ली हो, तो अगर इससे नजिस हुआ है तो इसके बारे में हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर किसी बर्तन को कोई कुत्ता चाट ले तो उसको पवित्र करने के लिए आवश्यक ये है कि पहले उसको मिट्टी से मांजा जाए। मिट्टी से मांजने के बाद, जैसा कि हमने बताया, अगर मिट्टी से मांजने के बाद कुर पानी से पाक किया जा रहा है तो एक मर्तबा, कलील पानी से पाक किया जा रहा है तो 2 बार पवित्र किया जाए। और अगर सुअर ने किसी बर्तन को चाट लिया जाए, उसमें कोई सैया या लिक्विड चीज़ पी ली है, तो अगर उससे नजिस हुआ है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि पहले उसको मिट्टी से मांजा जाए। मिट्टी से मांजने के बाद उसको 7 मर्तबा पवित्र किया जाए, यानी 7 मर्तबा उसको पानी के अंदर डाला जाए, उसके अंदर पानी को घुमाया जाए, इस प्रकार किया जाए, तब वो पवित्र होगा। तो ये वो चीज़ थी, यानी बर्तन हो और पानी कलील या कसीर हो, किस प्रकार से पवित्र किया जाएगा, जो हमने आपके सामने अभी बयान किया। लेकिन अगर अपवित्र होने वाली चीज़ बर्तन नहीं है, बर्तन के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ है, तो इसके बारे में सबसे पहला प्रश्न जो ये किया जाए जो किया जाएगा वो ये है कि जिस चीज़ से अपवित्र हुई वो क्या है, या तो वो पेशाब से अपवित्र हुई है या पेशाब के अतिरिक्त किसी और चीज़ से हुई है, यानी वो मूत्र के कारण अपवित्र हुई है या मूत्र के अतिरिक्त कोई और चीज़ है जिसने उसको अपवित्र और नजिस किया है। तो अगर वो मूत्र से नजिस हुई हो तो अगर उसको एक मर्तबा कुर पानी से धो दिया जाए तो पाक हो जाएगी, और अगर कलील पानी से धोया जा रहा है तो उसको कम से कम 2 बार धोया जाए। यानी पेशाब से नजिस होने वाली चीज़ को अगर धोया जा रहा है तो कसीर पानी से 1 मर्तबा और कलील पानी से कम 2 मर्तबे धोया जाए, तभी वो पाक होगी। और अगर पेशाब के अतिरिक्त किसी और चीज़ से नजिस हो रही है तो उसके लिए ये कुर पानी के लिए कहा गया है, अगर कुर पानी से पाक किया जाए तो 1 मर्तबा, और कलील पानी से ही पाक किया जाए तो एक मरतबा पाक करने पर काफ़ी हो जाएगा। यानी जैसा कि हमने ऊपर बताया, अगर पेशाब से पाक होती है, पेशाब से कोई चीज़ नजिस होती है, तो उसको एक बार धोला जाएगा कसीर पानी से, और कलील पानी से दो मरतबे धोया जाएगा। लेकिन पेशाब के अतिरिक्त अगर कोई और चीज़ उसको अपवित्र कर रही है, तो चाहे वो कलील पानी हो चाहे वो कसीर पानी हो, उसको एक मरतबा धो देने से वो चीज़ पवित्र हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जिस चीज़ को हम पवित्र करना चाह रहे हैं पानी से, उसके लिए सबसे पहली चीज़, जो सबसे आवश्यक चीज़ है, वो ये है कि वो अपवित्रता, वो नजासत जो उसके ऊपर लगी है, उसको पहले हटाया जाए। अगर कोई अपवित्र चीज़, कोई नजासत उसके ऊपर लगी है, तो पहले उसको हटाया जाएगा। हटाने के बाद उसको, जैसा कि हमने बताया ऊपर, कि वो पाक करने वाला पानी कसीर है या कुर है या कलील है, वो पेशाब से नजिस भी या किसी और चीज़, तमाम वो शर्तों के साथ फिर पाक किया जाएगा। यानी सबसे पहली शर्त यह है कि खुद नजासत को हटाया जाए, उसके पास बताए गए अहकामों के अनुसार उसको पवित्र किया जाए। दूसरी चीज़ जो ये है कि जैसे कभी कभी कपड़े, फर्श, मोकेट या इस प्रकार की चीज़ें जो नजिस होती हैं, और ये चीज़ें अपने अंदर पानी को रोक लेती हैं, इनको कैसे पवित्र किया जाएगा? अगर वो चीज़ें जो अपने अंदर पानी को रोक लेती हैं, उनको पवित्र करने का तरीका ये है कि जब उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, तो पानी डालने के बाद उसको निचोड़ा जाए। निचोड़े जाने के बाद उसको फिर पानी डाला जाए, यानी अगर कलील पानी है तो उसको दोबारा डाला जाए, और तब वो पवित्र होगी। यानी कलील और कसीर के साथ जो आदेश बयान किए गए हैं, उसके साथ साथ आवश्यक ये है कि अगर कपड़े या मोकेट वगैरह को पाक किया जा रहा है, तो उसको निचोड़ा जाए या किसी और तरीके से उसके अंदर का पानी निकाला जाए, उसके बाद वो चीज़ें पवित्र होंगी। उसके बाद जो चीज़ आती है, जो मसला हमारे सामने पेश आता है, वो ये है कि बर्तन को जब पवित्र किया जाए, किस प्रकार उसको धोया जाए जो पवित्र होंगे। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि अगर किसी बर्तन को हम पवित्र करना चाह रहे हैं, तो कैसे पवित्र करेंगे, यानी किस प्रकार उसके ऊपर पानी डालेंगे या किस प्रकार उसको पानी के अंदर घुमाएंगे, इस प्रकार कैसे पवित्र किया जाएगा। तो अगर बर्तन को कसीर पानी से पवित्र किया जा रहा है, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि अगर जिस चीज़ के अंदर पानी कसीर पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक मतलब डिबोया जाए, डिबोने के बाद अगर इसको निकाल लिया जाए, तो बर्तन पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर कलील पानी से उसको पवित्र किया जा रहा है, तो कलील पानी के लिए पवित्र करने के लिए आवश्यक ये है कि उसके अंदर, जहाँ पर बर्तन के अंदर नजासत लगी हुई थी, जो उसको हमने हटा दिया है पहले, उसको अंदर 3 मरतबे पानी को लिया जाए और उसको भरा जाए। भरने के बाद उसको फेंक दिया जाए। 3 मरतबे जब ऐसा करेगा, उसके बाद बर्तन पवित्र हो जाएगा। या ये कि बर्तन के अंदर पानी भरा ना जाए, बल्कि पानी को थोड़ा सा लिया जाए और उसके अंदर घुमा दिया जाए, पानी को इस प्रकार घुमाया जाए कि वो नजासत के सारे स्थानों तक पहुंच जाए। अगर पानी, कलील पानी, नजासत के सारे स्थानों तक पहुंच जाता है, और ये कार्य 3 बार किया जाता है, तो 3 बार करने के बाद वो बर्तन पवित्र हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें थीं जो कलील और कसीर पानी के संबंध में आपके सामने हमने बयान की कि कोई पानी कैसे, कुर पानी किसी बर्तन को या किसी और चीज़ को पवित्र कर सकता है, या अगर वो पानी कलील है, कुर से कम है, तो किन शर्तों के साथ उसको पवित्र कर सकता है। इसी जल से संबंधित कुछ और मसले हैं जो हम आपके सामने बयान करते रहेंगे, लेकिन अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।